हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एक वायग्राम श्रीमान कृष्ण केशवदास और सुनीति माता जी ने आप सबको निमंत्रण दिया है गौरंगा महाप्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष में। गत 10 साल से ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, आप सबका इसमें स्वागत है। सौभाग्य से हमको अभी सेवा का मौका मिला है। एक गांव एक वाय में जैसे आज गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी की इच्छा थी, श्री प्रभुपाद की ये भविष्यवाणी है, श्री प्रभुपाद ने ये फोरकास्ट किया है। जैसे आज यहां आप सब ये उत्सव मना रहे हैं, ऐसे मॉरिशस के हर एक गांव में चेतना महाप्रभु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा हर ग्राम में। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, और आप अलग अलग ग्रामों से आए हैं, अलग अलग गांव से आप लोग आए हैं, आप इससे प्रेरणा लीजिए। और ये उत्सव एक महीना चलता रहना चाहिए, रोज किसी न किसी ग्राम में ऐसे उत्सव होना चाहिए, यही चेतना महाप्रभु की इच्छा है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आज आप लोग सब यहां आए हैं, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सब आपस में मिलते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, यही जीवन है। ये नहीं है तो बाकी सब बेकार है। तो यही चेतना महाप्रभु की कृपा से गांव गांव में संकल्प करो कि इसको बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, इसको बंद करो, अभी हो गया ठीक है। It's all ritual. It's okay. It's भगवान को भोग लग रहा था, भगवान जगन्नाथ ऊपर बैठे हुए हैं ना, भगवान जगन्नाथ दिन में 56 भोग 56 भार खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं बाबा, ऊपर बैठे हैं ना जगन्नाथ बाबा। इसलिए भारत में ये कहावत है कि भगवान श्री कृष्ण को जब आराम करना होता है, सोना होता है, तो वो श्रीरंगम मंदिर में जाते हैं। श्रीरंगम मंदिर सबसे दुनिया का बड़ा मंदिर है, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ, श्री रंगम, जहां चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रहे थे, जहां वेंकट भट्ट का बेटा गोपाल भट्ट 6 गोस्वामी में श्री रंग मंदिर से महाप्रभु के चरण में आए थे, उस मंदिर में भगवान विष्णु सोए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जब सोना होता है तो जाते हैं कहां, श्री रंगम में। जब खेलना होता है तो वृंदावन में आते हैं, गायों के पीछे भागते हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं। जब भूख लगती है तो जगन्नाथपुरी जाते हैं, बहुत माल है उधर। और जब पैसा इकट्ठा करना होता है तो तिरुपति जाते हैं। दुनिया में सबसे शाहूकार मंदिर तिरुपति है। जिस मंदिर में अधिक से अधिक धन आता है वो मंदिर तिरुपति है। दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा लोग जाके पैसा ऐसे हुंड में डाल के आते हैं, सोना चांदी जो आए डाल के आते हैं, वो मंदिर है श्री तिरुपति। और वहां भगवान वैकुंठनाथ रहते हैं, वेंकटेश बालाजी कहते हैं उनको। तो भगवान जगन्नाथ है इसलिए भोग बहुत ज्यादा चाहिए। और जगन्नाथपुरी में एक समय में 1 लाख आदमी भी चले जाएं, कितने आदमी, 100,000, 1 लाख, इतना प्रसाद वहां पका हुआ हर वक्त तैयार मिलेगा। आनंद बाजार है, आनंद बाजार में इतना प्रसाद, और प्रसाद वो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। और उनके रसोई घर में आपको अंदर तो नहीं जाने देंगे, खिड़की से देखेंगे तो लकड़ी से पकाते हैं, एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऊपर वाले बर्तन में चावल पहले पकते हैं, आग नीचे वाले बर्तन को लगती है, पकता पहले ऊपर है। और ऐसे मिट्टी के बर्तन रोज बनाते हैं लोग, हजारों बर्तन लोग रोज बनते हैं, रोज भगवान को भोग लगता है, रोज यात्री वो लेते हैं प्रसाद और पाते हैं। तो कल कथा करेंगे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे और कैसे उनका वहां दिनचर्या थी। आज कथा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। पहले आप लोग सब जानते हैं ये उत्सव अपन गौर पूर्णिमा के उपलक्ष में मना रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने संग में राधा रानी को लेकर दोनों मिलकर एक हो गए। राधा कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए, श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा कृष्ण दोनों मिले हुए हैं, दोनों आपस में मिलके एक हो गए हैं। है तो स्वयं कृष्ण लेकिन भाव राधिका के, भक्ति के भाव में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। 524 साल पहले पूर्णिमा जो अभी गई, जिसको होली का दिन कहते हैं, उस दिन के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का शयन काल को संध्या के समय चंद्र ग्रहण था, चांद को ग्रहण लगा हुआ था, लाखों लोग गंगा में हरी बोल करके स्नान कर रहे थे, और उस वक्त चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ था। तो भगवान जन्म के साथ ही लोगों को हरि नाम जपाने का संकल्प करके आए थे, नाम संकीर्तन शुरू किया। चेतना महाप्रभु 24 साल तक नवद्वीप में रहे, विवाह किया। 24 साल की आयु में उन्होंने प्रचार के दृष्टि से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनकी माता सची देवी के आग्रह करने के ऊपर, आज्ञा देने के ऊपर वृंदावन न जाकर रहे और जगन्नाथपुरी में रहे। चेतन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और जाने के बाद 2 साल तक दक्षिण भारत का भ्रमण करने गए, सब तीर्थों का। जहां जहां गए सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जपाया। दक्षिण भारत में चेतन महाप्रभु जहां भी गए ये गाते थे, कृष्णा 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 है, ये गाते जहां जाते थे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामम। जहां भी जाते थे महाप्रभु के मुख में यही कृष्ण 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 है, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामम। ऐसे हर समय भगवान के नाम का उच्चारण होता था। कोई पूछे क्यों गए थे भ्रमण करने के लिए, कह के तो ये गए थे कि मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेके गया है, उसको मैं ढूंढने जा रहा हूं। लेकिन गए थे असल में, दक्षिण भारत में बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं थी। उन विद्वानों को, बड़े बड़े पंडितों को कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का प्रसाद देने के लिए गए थे। उस यात्रा में चेतना महाप्रभु मुंबई तक आए थे और मुंबई से वापस लौटते हुए कोल्हापुर में महालक्ष्मी का दर्शन करके पंडरपुर आए थे और पंडरपुर में महाप्रभु को अपने भाई विश्वरूप का पता लगा था। सारंगपुरी या ऐसे कुछ नाम है, माधवेंद्रपुरी के शिष्य, उन्होंने उनको समाचार दिया था। उसके बाद वो वहां से लौटे और जब लौट रहे थे तो एक गांव में ब्राह्मण संस्कृत में कृष्ण करुणामृत पढ़ते थे। ये पुस्तक बहुत अच्छा लगा, कॉपी करके लिया। और दक्षिण भारत में एक और मंदिर में भगवान विष्णु के केरल से गुजरते हुए चेतन महाप्रभु को 5वां अध्याय ब्रह्म संहिता का मिला। ये 2 पुस्तक साथ में लाए दक्षिण भारत की यात्रा से। हाँ, ब्रह्म संहिता जो हम रोज सुबह देखते हैं भगवान के दर्शन के समय, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम बजामि, ये 2 पुस्तक, एक और कृष्ण करुणामृत, ये दोनों महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा से वापस आए जगन्नाथपुरी में। हर समय कहते थे मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। लेकिन रामानंद राय, स्वरूप दामोदर कहते हैं, अब 4 महीने बरसात के कहां जाओगे, बरसात खत्म हो जाती थी, कार्तिक में जाना, कार्तिक आता था, अब बहुत सर्दी है, कहां जाओगे, ठंडी का मौसम आ गया, अभी थोड़ा बस डोल यात्रा करके जाना, डोल यात्रा का मतलब होली, अब वो डोल यात्रा करके जाना, डोल यात्रा आती बोला अभी तो देखो बंगाल से लोग निकल चुके हैं, सब आपको देखने के लिए आ रहे हैं, रथ यात्रा तो होगी उसके बाद जाना। 3 साल ऐसे महाप्रभु को जाने नहीं दिए, 3 साल तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। इसका मतलब 2 साल दक्षिण भारत घूम के आए, 3 साल, 5वां साल जब आया तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय सारे बंगाल से भक्त आए थे। नित्यानंद प्रभु को कहा था चेतन महाप्रभु ने, आप हर साल मत आया करो, आप बंगाल में प्रचार करो, मैं वहां प्रचार करना चाहता था लेकिन मैंने संन्यास लिया तो मैं वहां नहीं रह सकता हूं, मेरा काम और कोई नहीं कर सकता है, नित्यानंद आप ही कर सकते हो। और श्रील प्रभुपाद ने भावार्थ में लिखा है, चेतन महाप्रभु ने तो रूप सनातन बड़े मंत्रियों को भक्त बनाया, सार्वभौम भट्टाचार्य वाले पंडित को भगत बनाया, लेकिन जगाई माधाई जिले जैसे लोगों का उद्धार तो नित्यानंद प्रभु ने किया। इसका अर्थ है जो चीज चैतन्य महाप्रभु कहते मैं नहीं कर सकता हूं वो आप कर सकते हो। इसलिए नित्यानंद प्रभु आप जाओ और बंगाल में प्रचार करो या मत आया करो हर साल। और नित्यानंद प्रभु कहते मैं शरीर हूं आप प्राण है, दोनों साथ रहेंगे अलग अलग कैसे हो जाएंगे? आप कहेंगे तो मैं उधर रहूंगा लेकिन मेरी इच्छा आपको दर्शन करने की। फिर महाप्रभु सबको जब विदा कर रहे थे कि जाओ, शिवानंद सेन आया था इस साल, ये पांचवा साल जो था, अद्वैत आचार्य अपनी पत्नी सीता देवी के साथ आया था ठाकुरानी के। महाप्रभु पहली बार वैष्णव को अपने पत्नियों के साथ जगन्नाथपुरी में देखा। हाँ यहां भी हम देखते हैं माता जी लोग ज्यादा हैं, प्रभु लोग थोड़े कोनों कोनों में गिने गिने दिखते हैं, लेकिन महाप्रभु के दर्शन के लिए वैसे तो केवल पुरुष आते थे। इस साल अद्वैत आचार्य अपने साथ सीता ठाकुरानी को लाए, श्रीवास आचार्य अपने साथ मालिनी को लाए, चंद्रशेखर आचार्य आचार्य रत्न अपनी पत्नी को लाए, मालती उनका नाम है, और अपने घर से बहुत सा सूखा प्रसाद, जैसे ये ड्राई प्रसाद ऐसा लाए कि महाप्रभु को घर में भोजन के लिए बुलाएंगे। महाप्रभु ने सबको विदा किया। आज जो हमको कथा करनी है वो हमको बात ये कहनी है, उस पांचवें साल में कुलिया ग्राम के वासी दो जगह से, बंगालपुरे से भक्त आते थे, कुलिया ग्राम उसको कोलद्वीप कहते हैं, कोलद्वीप नवद्वीप में एक द्वीप है कोलद्वीप, और कुलिया ग्राम से जो भक्त आए थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से एक साल पहले भी प्रश्न पूछा था, आज प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न आप सुनिए, अब देखिए ये प्रश्न सुनिए। कुलीन ग्रामी पूर्ववत कैला निवेदन, जो कुलीन ग्राम से आए थे ना, जैसे उन्होंने एक साल पहले महाप्रभु को निवेदन किया था, प्रार्थना की थी, आज फिर वही प्रश्न करने लगे। प्रश्न क्या करते हैं? प्रभु आज्ञा करो, अगर आप भगवान महाप्रभु आज्ञा दें तो हम ये सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हो? हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए? आप लोग मानो आप लोग पूछें कि हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में, जीवन में हमें क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य साधना, को हमें करना क्या चाहिए और कैसे करें, साधन क्या है उसका, ये प्रश्न है। आपका ऐसा प्रश्न है मन में कि हम जिंदगी में क्या करें? सुबह उठें 7:30 बजे, घर से हाथ मुंह धोएं, डबल रोटी के अंदर कुछ मसाला डालें और भागे, बस के अंदर चढ़ें और नौकरी करें, शाम को भगे थके वापस आएं, इधर से बिस्तर पर सामान पटके कुछ खाएं, मोजे फिर डोमे और दिन पूरा कि यही करना है और कुछ करना है? हाँ, और रोज यही काम करना है बस। आश्चर्य लगेगा आपको कि ये बंगाल के भक्त हर साल 4 महीना चतुर्मास्य बरसात के 4 महीने जैसे होते हैं ना, ये 4 महीने जगत मां जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के संग रहते थे, 4 महीने कुछ नहीं करते थे, केवल महाप्रभु के संग में बैठ के हरि कीर्तन कथा करते थे बस। और मैं आपको सच बताता हूं, आज से 40-50 साल पहले हमने अपने ग्रामों में देखा था, 4 महीने केवल हमारे बड़े बुजुर्ग काम करते थे, बरसात पड़ती थी खेत में अनुपात भजन करते थे, 8 महीने कुछ नहीं करते थे, केवल कथा कीर्तन भगवान का भजन बस और कोई काम नहीं। 4 महीने काम करते थे, 8 महीने मौज से खाते थे, कमी कभी नहीं थी। अभी ये, और तब एक आदमी काम करता था, घरवाली केवल रोटी बना के माता जी भेजती थी और कोई काम नहीं। अभी हम बाप भी काम, बेटा भी काम, पत्नी भी काम, अतनी भी काम, कतनी भी काम, फिर भी पूरा नहीं, सारे ही पागल की तरह काम करते फिर भी पेट नहीं भरता। ये कलयुग की पहचान है, इसको कलयुग बोलते हैं। जब कलयुग मिला था युधिष्ठिर महाराज से तो पहला प्रश्न ये पूछा था, युधिष्ठिर महाराज तो भगवान का भजन कर रहे थे, बाहर खड़ा था भीम, उससे आके प्रश्न पूछा, महाराज से मिलना है, बोला काम क्या है? बोला बहुत बड़ा प्रश्न पूछना है। बोला हमसे पूछ लो महाराज, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रश्न ये है, पानी का एक बाल्टी कुएं से निकाला, कुआं समझते हैं ना, वेल, एक बाल्टी पानी कुएं से निकाला और 9 बड़े बड़े बर्तन भर गए। अच्छा, बड़ी बाल्टी होगी, आदमी शक्तिशाली होगा, निकाला होगा। बोला हां, लेकिन वो 9 मटके वापस बाल्टी में डाला, बाल्टी आधी पड़ी थी। ये समस्या है हमारी, दिस इज माई प्रॉब्लम। अरे ऐसे कैसे होगा, एक बाल्टी से 9 बर्तन भर गए, उसी वक्त तुम 9 को वापस डाल दिया, बाल्टी आधी भी नहीं, ये क्या बात है, गिर गया, मूर्ख थे क्या? बोला नहीं नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरा। भीम बोला ये मेरे को समझ में नहीं आता, महाराज से पूछना पड़ेगा। और जब महाराज से पूछा गया तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, ये कलयुग था, ये कह रहा था पहले एक घर में, एक बड़ा घर का कमाता था, घर के 9 आदमियों का पेट भरता था और सब सुखी थे, अब 9 कमाएंगे कलयुग बोलता है सबके सब, तब भी एक आदमी घर में बूढ़ा होगा तो भी उसको कहेंगे घर से निकालो नहीं खिलाएंगे, घर से निकालो नहीं खिलाएंगे। ये कलयुग की पहचान है, पहले एक आदमी कमाता था, और हमने देखा था एक पिताजी कमाते थे, 4 भाई होते थे उनको पढ़ाते थे, बहनें होती थी उनकी शादी भी करते थे, सबको घर भी बना के देते थे, लेकिन अब पहले तो बच्चे चाहिए ही नहीं, चाहिए तो एक बहुत है, 2 हो गए तो मर गए, क्या मुसीबत आई है तुम लोगों के ऊपर, 5-5, 7-7, 10-10 जिसके घर में भाई होते थे बोलता था ये बड़ा खानदान अच्छा है, बड़ा खानदान है, अब तो कोई बच्चा नहीं है, वो अब अच्छा खानदान है, क्या मुसीबत आ गई है, बच्चा ज्यादा पैदा नहीं करना है, पाला नहीं जाएगा, अरे पाला नहीं जाएगा तो भोग करना बंद कर दो ना, वो तो नहीं बंद होता है। अधिक बच्चे होना अच्छी बात है, एक कभी बीमार हो गया, एक ने घर से निकाला, दूसरे घर में तो जाओगे रहोगे, एक ने निकाला तो अब कहां जाओगे, ये मुसीबत कहां से आ गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चेतना महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा के 7 भाई थे, वो पांचवा नंबर था, वो 7 भाई थे, कोई कमी नहीं थी, ब्राह्मण थे, चिंता नहीं थी, ये 4 भाई थे, श्रीनिवास, श्रीवास, श्रीपति, श्री निधि, श्री राम, 4 भाई थे, बहनें भी थी, कोई परेशानी नहीं थी। अभी एक है वो भी हमसे पाला नहीं जाता है, 2.5 साल का जाके नर्सरी में फेंक के आओ, जाके पढ़ेगा उधर, क्या पढ़ेगा, वहां से कुछ सीख के आएगा तो माता पिता का चरण छुएगा, वहां के डिमटी डिमटी इक्टी मिक्टी क्या सीख के आता है कुछ मालूम नहीं, क्या सीख के आता है बच्चा छोटा आपका स्कूल जाता है वो, हाँ, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, ये सीख के आता है, हाँ क्या सीख के आता है, हाँ कुछ बच्चे लोग क्या सीखते आते हैं स्कूल से, हाँ क्या सीख के आते बेटा बोलो, मास्टर जी बोर्ड की तरफ देखेगा तो पीछे बीच बेंच कैसे बजाएंगे, कुड़ 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 कुड़, ये सीख के आते हैं कि मास्टर जी सिर्फ उधर ऐसे मुंह करेगा तो पीछे मस्ती शुरू हो जाएगी, यही सीखने जाते हैं ना, मास्टर जी कैसे आपको डर लगता है, मास्टर जी को आपसे डर लगता है, हम जब पढ़ते थे अगर अगर गली में मास्टर दिखता था हम दूसरी गली में जाते थे, उसके सामने नहीं आते थे, हमको उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अब तो मास्टर बेचारा, एक मास्टर था उसकी माँ ने कहा बेटा तुम स्कूल जाओ, अभी तक जा नहीं रहो, नहीं नहीं जाऊंगा, 4 आदमी आया उठा के ले जा रहे, बोला ये भाई अपने आप चला जाएगा, इसको ऐसे क्यों ले जाते हो, स्टूडेंट है तो अच्छा पढ़ेगा, बोला स्टूडेंट नहीं ये मास्टर, ये डरता है स्कूल नहीं जाता है, ये डरता है स्कूल ही नहीं जाता है, इसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, जाएगा तब स्कूल खुलेगी, क्या पढ़ाई का हाल हो गया है। तो हमको क्या करना चाहिए, महाप्रभु से ये कुलीन ग्राम के लोग पूछते हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, साधन क्या कैसे करना चाहिए, प्रभु कहे, चेतन महाप्रभु क्या कहते हैं सुन लीजिए, ये कभी भूलना मत। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो, दो काम करो। आपका कर्तव्य दो काम है, सबका कर्तव्य दो काम है, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो। क्या मिलेगा दुनिया में, हम किसी को बोलते हैं ना क्या मिलेगा, हम ये काम करें क्या मिलेगा, मालूम है? तो क्या मिलना क्या है? अब महाप्रभु क्या क्या मिलेगा, शीघ्र प्रभु श्री कृष्ण चरण। ये दो काम करोगे तो बहुत जल्दी, शीघ्र का मतलब बहुत जल्दी, इमीडिएटली श्री कृष्ण के चरण मिलेंगे, श्री कृष्ण के चरण मिलेंगे। और श्री कृष्ण के चरण में कौन होता है, श्री कृष्ण के चरण कौन दबाता है, लक्ष्मी। श्री कृष्ण के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। श्री कृष्ण मिलेंगे तो भूखे कंगाल नहीं हो जाओगे, वो लक्ष्मी पति है, वो मिला तो दुनिया में कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आ जाए तो। दो काम करना है हमारा साधन, कर्तव्य क्या है, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर, शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। बहुत जल्दी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, केवल ये दो काम आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। अब यहां प्रश्न उठा था, वैष्णव कौन भाई, वैष्णव कौन है, ये प्रश्न पूछा है। ते हूं कहे, अब तो कुलीन ग्राम पे लोग कहते हैं, ते हूं कहे के वैष्णव की तारह लक्षण। वैष्णव कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, धोती पहनी होती है, तिलक लगाया होता है, ये माला गले में डाल के घूमता है, लक्षण क्या होते हैं उसके, बताइए। तभी हासी कहे प्रभु जानी तहारा मन। चेतन महाप्रभु ने उनके मन में देखा कि इनको मन में ये विचार है कि वैष्णव, ये तो सब लोग यहां कंठी माला डाल के धोती पहन के, उस जमाने में भारत के अंदर पैंट तो था नहीं, जब महाप्रभु आया तब ये पैंट नहीं था, सब लोग धोती पहनते थे, तब धोती ही धोती थी और कुछ था ही नहीं, पुरुष धोती पहनते थे और स्त्री साड़ी पहनती थी, ये दो ऐसे वस्त्र हैं जिसमें सिलाई की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टेलरिंग, दोनों कपड़े ऐसे हैं जिसमें सिलाई की जरूरत नहीं है, एक साड़ी में माताजी पूरा अंग ढक सकती है, आज भी महाराष्ट्र में साड़ी को धोती की तरह पहनते हैं और ऊपर से भी पूरा ढक लेते हैं, एक साड़ी में नारी अपना ढक अंग ढक सकती है और एक धोती में पुरुष अपना जीवन बिता सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, दर्जी की जरूरत नहीं। ये ड्रेस क्यों, हमारे ऋषियों मुनियों ने इस ड्रेस को क्यों स्वीकार किया था, ये ड्रेस क्यों पुरुष और स्त्री के लिए बताई थी, धोती में जेब होता है, समझना, धोती में जेब होता है, माताजी साड़ी में जेब होता है, नहीं होता है ना, इसका मतलब कुछ कठा नहीं करना चाहिए, जेब ही नहीं होना चाहिए, ये दोनों कपड़े जिसमें जेब नहीं है। और आदमी का जब देहांत हो जाता है उसको अंतिम कपड़ा पहनाते हैं, उसको कफन बोलते हैं, उसमें भी जेब नहीं होता, मालूम है, देखा है किसी को मरते उसको आखिरी कपड़े पहनाते, आपने देखा है, वो भी सिला हुआ कपड़ा नहीं होता है, उसमें जेब नहीं होता है, क्यों? अब थोड़ा सा ये पुजारियों से पूछिए जो रोज मंदिर में सुबह जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, तब कब कुर्ता पहन के जाते हो, नहीं पहन जाए, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन के जाना है मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए, ये मालूम है ना आप सबको, पुजारियों को, माताजी लोग आरती करने जाती है ना, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनने जाना होता है, क्यों? कि भगवान के पास कुछ लेके जाया नहीं जा सकता जेब में, क्योंकि इस दुनिया से जब जाएंगे भगवान के पास जाएंगे तो दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाएगी, तो ये जो दो वस्त्र थे, साड़ी और धोती, ये वैराग और त्याग के वस्त्र हैं, ये भगवान को प्राप्ति के वस्त्र हैं, ये यूनिफॉर्म है भगवान के भक्तों की, और यही पहना करते थे। अभी भी माता जी जो पुरानी साड़ी पहन के बैठी हैं, उनसे पूछो कि वो पेंट पहन के कभी और साड़ी पहनने में अंतर कितना है, सुख किस में ज्यादा मिलता है। हाँ जी, और आप लोग धोती और पेंट के अंदर बता दो कौन सी चीज अच्छी लगती है, ईमानदारी से बताना। धोती एयर कंडीशन वीआईपी है। अभी तो लोगों को चाहिए एक पेंट जिसमें 15 जेब वाला चाहिए, 25 जेब वाला चले, इसका मतलब इस दुनिया में मरेंगे कहीं भगवान के पास नहीं जाएंगे, जितने जेब ज्यादा। फिर भी आखिरी जेब किस तरफ रखते हैं, देखो दिल के ऊपर रखते हैं। जेब कहां रखते हैं, दिल के ऊपर, पैसा दिल में रखेंगे, बहुत प्यारा लगता है। तो गौरव के साथ अब एक और बात भी देख लीजिए, आदमी जब पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस में होता है तो सब उसका सम्मान करते हैं, डॉक्टर जब डॉक्टर की ड्रेस में होता है सफेद कोट पहन के और गले में स्टेथोस्कोप होगा तो उसके लोग उसका सम्मान करेंगे, डॉक्टर समझेंगे ना, वकील काला कोट पहना होगा तो उसको पहचानेंगे। ऐसे भगवान के भक्त को उसका यूनिफॉर्म ये है, धोती कुर्ता। अभी भी बहुत से भक्त है जो कुछ ऐसे मंदिर अभी भारत में है जहां कुर्ता पहन के नहीं जाया जाता। हाँ? कुर्ता पहन के अंदर जाने नहीं दे, कुर्ता बाहर रखना पड़ेगा, धोती खरीद के पहन के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर नहीं आने देंगे। गुरुवायूर मंदिर है केरल में, वो भगवान विष्णु की वो मूर्ति है जो द्वारका के अंदर देवकी और वसुदेव जिसकी पूजा करते थे, वो मूर्ति वहां से गुरुदेव और वायुदेव उठा के ले गए थे, वो केरल के मंदिर में है। उस मंदिर में जाने से पहले माता को साड़ी में जाना पड़ेगा, पुरुष को धोती पहन के जाना पड़ेगा, कुर्ता उतार के बाहर रखना पड़ेगा, नहीं जा सकते कुर्ता पहनकर, बहुत से मंदिरों में अभी तक ये नियम है। तो अब केवल कपड़े से पहचाना जाएगा, महाप्रभु समझ गए कि लोग तो सारे धोती पहनते हैं, तिलक लगाने में कौन सा खर्चा लगता है, ठप्पा लगाना है और क्या। तो महाप्रभु उत्तर क्या देते हैं, सुन लो, वैष्णव कौन है, कृष्ण नाम निरंतर यहार वदने, कृष्ण नाम निरंतर यहार वदने, वदन कहते हैं मुख को, जिसके मुख में निरंतर कृष्ण का नाम हो, जिसके मुख में निरंतर कृष्ण का नाम हो, से ही वैष्णव श्रेष्ठ, वो वैष्णव श्रेष्ठ है। भज तहारा चरण, उसके चरणों की सेवा करो। वैष्णव की पहचान क्या है, कृष्ण नाम निरंतर यार वदन, जिसके मुख में निरंतर कृष्ण का नाम हो। और निरंतर के अर्थ बहुत सारे लिखे हैं, अंतर निरंतर, अंतर ये शरीर इसको अंतर कहते हैं, धन को अंतर कहते हैं, पैसे को, जनता को अंतर कहते हैं, लोभ को अंतर कहते हैं, लोभ शरीर जनता पैसा ये सब भगवान से हमको दूर ले जाते हैं। इन सब को भूलकर जो निरंतर भगवान का नाम जपे था जपता है उसको वैष्णव कहते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इसके ऊपर लिखते हैं, जो निरंतर भगवान का नाम जपता है उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं, दूसरे स्तर का वैष्णव है, हर समय जिसको भगवान के नाम का, जिसके मुख में हर समय भगवान का नाम है। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसे भक्त का भगवान से बहुत प्रेम होता है, दूसरे भक्तों से मित्रता करता है, और नए भक्तों को भगवान के नाम का कृपा करके प्रचार करता है। ये किसकी पहचान है, पता कैसे लगेगा कि ये वैष्णव है। निरंतर भगवान का नाम जपेगा, भक्तों के साथ प्रेम और मैत्री करेगा, कोई शत्रु नहीं होगा, और जो नए लोग हैं पहली बार जैसे आते हैं उनके ऊपर करुणा करके भगवान की शिक्षा देगा, उनको हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए प्रेरणा देगा। इसको कहते हैं वैष्णव। और फिर आगे महाप्रभु कहते हैं दोबारा जब आए तो दोबारा ये प्रश्न किया कि वैष्णव कौन, अभी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ वैष्णव कौन, तब महाप्रभु उत्तर देते वैष्णव कौन है, यार दर्शने मुख ऐसे कृष्ण नाम। वैष्णव वो है जिसको देखने से आप दूसरे आदमी के मुख से कृष्ण का नाम निकल जाए। जैसे अभी देखें कभी भक्त जाते हैं ना हरे कृष्ण वाले रोड के ऊपर, तो लोग क्या कहते हैं, देखो हरे कृष्ण वाले भक्त जाते हैं तो उसके मुख से कृष्ण का नाम निकल जाता है ना। वैष्णव कौन है, यहां दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहारा जानी है तुम्ही वैष्णव प्रधान। जिसको देखने से कृष्ण का या नाम मुख में आ जाए उसको महान वैष्णव मानना चाहिए। उत्तम कोटि का वैष्णव कौन है, जिसको देखने से कृष्ण का नाम मुख में अपने आप आ जाए। अब प्रभुपाद जी का आप अभिषेक कर देख रहे थे, ये ऐसे उत्तम कोटि के वैष्णव थे, अमेरिका जैसे नगर में और अमेरिका जैसे देश के न्यूयॉर्क जैसे कलयुग के नगर में लोग उनको देखते थे तो हरे कृष्णा का नाम उनके मुख से निकलता था। और इसी लीला में चैतन्य महाप्रभु का आगे लिखा है, जब उन्होंने वृंदावन जाने की तैयारी की, आज्ञा लिया, कौन से दिन निकले, विजयदशमी का दिन। विजयदशमी किसको कहते हैं, दशहरे का दिन, रामनाम, दशहरे के बाद दिवाली आती है, दिवाली से पहले चैतन्य महाप्रभु निकले जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ से आज्ञा लेके और भक्तों के संग में निकले, जहां जहां रुके जगन्नाथपुरी से प्रसाद आया, कटक में पहुंचे महाराज स्वयं प्रताप रुद्र आए भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और प्रणाम करके प्रार्थना किया और फिर एक आर्डर लिख दिया कि मेरे देश में जहां जहां से महाप्रभु गुजरे वहां नए घर चार पांच बनाए जाएं, इनके रहने के लिए नया घर होना चाहिए और भोजन की व्यवस्था जगह जगह पे ऊपर इनके लिए होनी चाहिए, जहां नदी को पार करना हो नई नौका होनी चाहिए, न्यू बोट। ये आदेश निकाला एकदम महाराज प्रताप रुद्र ने। और जैसे महाप्रभु आगे निकले नदी पार करने के लिए नई नौका आ गई, भक्त उसके अंदर बैठे नौका में कम और आगे चले गए। अंतिम स्थान जहां ओडिशा समाप्त होती है उत्कल देश, वहां का जो ऑफिसर था महाराज का प्रताप रुद्र कहने लगे, महाराज यहां से आगे मांस खाने वाले यवन का राज है, यहां का गवर्नर मुस्लिम मोहम्मदन है, मांसाहारी है, बड़ा दुष्ट है, आपको कष्ट देगा, इसलिए आप कुछ दिन यहां रुके, उनके साथ हम लिखा पढ़ी करते हैं, बातचीत करते हैं और वो आपको जब आज्ञा दें तब जाए, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। इतनी देर ये बात हो रही है, महापत्र, महापत्र का मतलब ओडिशा के महाराज का जो ऑफिसर है, तो उस यवर्न गवर्नर का, उस मुस्लिम गवर्नर का एक दूसरी ड्रेस में गुप्तचर सीक्रेट एजेंट स्पाई वहां आया और उसने देखा चैतन्य महाप्रभु को, केवल चैतन्य महाप्रभु को देखा और भक्त कृष्ण महाप्रभु कह रहे थे हरी कृष्ण हरी कृष्ण हरी कृष्ण, आनंद में मगन होके भक्त उनके सामने नाच रहे थे। वो देखते देखते वो जो आया था जासूस स्पाई जो आया था भाग के जाके गवर्नर को कहा, अरे एक हिंदुओं का मैंने बहुत बड़ा महात्मा देखा संत, जिसको देख के मेरे मुख से कृष्ण हरि निकल रहा है, मेरे मुख से कृष्ण हरि निकल रहा है, और हरि कृष्ण करके नाचने लगा उधर गवर्नर के सामने और कहने लगा, मैं जिस आदमी को देख के आया हूं ना वो बहुत बड़ा महापुरुष भगवान हो सकता है, साधारण आदमी नहीं है। गवर्नर के मन बदल गया, बोला हाँ ऐसा आदमी है, मैं उसको देखना चाहता हूं। चिट्ठी लिख के भेजा कि जाके ऑफिसर को बॉर्डर में दो, बॉर्डर के ऊपर देना कि गवर्नर कहता है कि मैं उस महात्मा को देखना चाहता हूं, मैं झगड़ा लड़ने नहीं आता हूं, युद्ध करने नहीं आता हूं। तो महापत्र ने लिख के भेजा, आप आइए लेकिन अपने साथ अस्त्र शस्त्र मत लाइए, दो चार मित्र आपके सेवक ला सकते हैं। गवर्नर आया, मुसलमान गवर्नर आया कुछ सेवकों के साथ, महाप्रभु को प्रणाम किया, महाप्रभु ने कृपा की दृष्टि उसके ऊपर डाली और उसने कहा मैं अपराधी, मैंने गौ का ब्राह्मण का इतना अपराध किया है, मेरा होगा क्या? आप कृपा किया, मेरे को दर्शन दिया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। महापत्र तो आश्चर्य में होगा कि हम सोच रहे थे कि इसको लिखेंगे, ये तो अपने आप यहां आ गया, क्या महाप्रभु का चमत्कार है। ये वैष्णव कौन है जिसका नाम सुनने से मांसाहारी पातकी पापी अपराधी भी कृष्ण का नाम लेना शुरू करता है? और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस जमाने में तो एक मुसलमान गवर्नर ऐसे भगवान के चरणों में आए थे चैतन्य महाप्रभु के। आज ये चैतन्य महाप्रभु और उनके चार संगियों पांच तत्वों का नाम प्रभुपाद कहते हैं, हम यहां अमेरिका और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अरे इन नाम लेने से आज भी लाखों की संख्या में मांसाहारी और यवन कृष्ण भक्त हो रहे हैं। आज भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। और उस गवर्नर ने नई नौका बनाई, नौका में एक कमरा, नया बोट बनाया, उसके ऊपर एक रूम बनाया और महाप्रभु को स्वयं लेने आया, अपने सैनिक साथ में, दस बोट में सैनिक रखे। बोला बहुत खतरनाक जगह है, यहां से जो हार्बर है उसको डायमंड हार्बर बोलते हैं, आजकल गंगोत्री जाते हुए रास्ते में आता है गंगा, बहुत वहां चौड़ा है, वहां पायरेट तो आपको यहां पता है, ये देश पायरेटों ने लाके कब्जा किया था, वहां सी के जो डाकू होते हैं उसको पायरेट कहते हैं ना, नौका में आके लोगों को लूटते हैं। बोला यहां बहुत पायरेट हैं, गवर्नर कह रहा है। 10 बोट में अपने सैनिक लिए और महाप्रभु को बंगाल तक पहुंचाया अपनी नौका में। तो ये कथा सुनने से ऐसे पता लगता है, महाप्रभु कहते हैं वैष्णव वो है जिसके दर्शन करने से भगवान का नाम कृष्ण का नाम मुख पे आ जाए। तो ये दो प्रश्न आप जीवन में रखिए कि हमारे को करना क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है तो वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। ये जो आप सब लोगों को यहां बुलाया है ये वैष्णव सेवा है। आप सब लोगों को बुलाना, घर में प्रसाद खिलाना, कथा कीर्तन करना, ये कीर्तन और वैष्णव सेवा दोनों है। इसलिए हमने आरंभ में कहा था, शुरू जब कथा की तब कहा था, हर गांव के अंदर कम से कम गौर पूर्णिमा का एक महीना रोज एक एक गांव में ऐसे हरि कीर्तन और वैष्णव सेवा का उत्सव होना चाहिए। फिर जन्माष्टमी का एक पूरे महीने के लिए ऐसे उत्सव गांव गांव में होना चाहिए। रामनामी का उत्सव, अभी रामनामी का समय आ रहा है, ऐसे रात का आपके लिए उत्सव ही उत्सव होना चाहिए, नहीं तो बेकार में सो के जिंदगी खराब करने का फायदा क्या? ऐसे ही जाएंगे घर में क्या करेंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर काम पे जाएंगे। अच्छा है कि उत्सव ये निरंतर चलते रहे, निरंतर चलेंगे तो निरंतर भगवान का नाम मुख से निकलेगा, निरंतर मुख से मिलेगा तो हम अपने आप वैष्णव हो जाएंगे। तो ये कम से कम 3 उत्सव, गौर पूर्णिमा, रामनामी और जन्माष्टमी, इसको ग्राम ग्राम में मनाने का प्रयास करो, अधिक से अधिक जगहों पे, जैसे आज यहां कर रहे हैं, 2 दिन पहले मोलाशो में थे, अब यहां कर रहे हैं, ऐसे 2, 4, 5, 10 जगहों पे इस तरीके से करो। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रचार कर पाएंगे, तभी हमारे को श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहां से आए पानीहट्टी, वहां से गंगा के अंदर से होके पानीहट्टी आए, पानी हट्टी आपने कभी देखा है? नहीं देखा है किसी ने? कभी गए हो मायापुर? सब लोग, बहुत से लोग गए हैं, भक्त लोग समय समय पे जाते हैं। जब कलकत्ते उतरते हैं तो कलकत्ते से आगे खरदा है, खरदा में नित्यानंद महाप्रभु का घर था, नित्यानंद बाड़ी बोलते हैं, और उससे थोड़ा आगे पानी हट्टी है, जहां नित्यानंद प्रभु ने दही चीरा का बहुत बड़ा उत्सव किया था पानी हट्टी का, और रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की थी। और पानी हट्टी में राघवेंद्र, राघव पंडित का घर है। हमने एक दिन आपको कृष्ण बलराम मंदिर में बताया था, चैतन्य महाप्रभु चार जगहों में हर वक्त रहते हैं, सती मां, सची माता के रंधन में, रंधन का मतलब रसोई घर, किचन में, क्या बोलते हैं किचन में, यहाँ किचन को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? हाँ, लाखू जी, लाखू जी क्या, क्विजीन, ओ क्विजीन, अंग्रेजी क्विजीन, जहां भोजन पकाया जाए, क्विजीन, तो सची माता के क्विजीन में सदा रहते हैं, क्विजीन जो पकाएगी महाप्रभु खाने आएंगे क्विजीन में। ओके, नित्यानंद कीर्तन, जहां नित्यानंद कीर्तन करेंगे वहां महाप्रभु प्रकट हो जाएंगे, और इसी पानी हट्टी में नित्यानंद के कीर्तन में साक्षात महाप्रभु आए थे। और तीसरी जगह श्रीवास आंगन, श्रीवास आंगन में महाप्रभु नित्य निवास करते हैं। और चौथा राघवेंद्र झालन, राघवेंद्र, ये राघवेंद्र राघव पंडित है ना, इसका झालन कहते हैं, ये झोलियां छोटी छोटी में, इसकी पत्नी दमयंती बहुत सूखा प्रसाद बनाती, जो महाप्रभु साल पूरा खाते थे। महाप्रभु एकदम राघवेंद्र के घर गए, राघवेंद्र पंडित के घर गए। कभी आप पानी हट जाएंगे तो राघवेंद्र का घर अभी भी उधर है, वो जाके देख सकते हैं। राघवेंद्र पंडित के घर गए और वहां से फिर आगे श्रीवास के घर गए, श्रीहट में, वहां से शांतिपुर में चले गए अद्वैत आचार्य के घर में। ये महाप्रभु वापस अपने बंगाली भक्तों को 5 साल के बाद देखने आए, 4 साल पूरे हो गए, वापस आए थे गौर देश में, और वहां से इसी कुलीन ग्राम में 7 दिन रहे थे। तब सारे पापियों का, अपराधियों का उद्धार कर लिया था महाप्रभु ने, जितने पापी अपराधी थे उनका उद्धार कर लिया था। एक अपराधी का नाम आपने कभी सुना हो, श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु कीर्तन करते थे 1 साल तक रात को दरी दरवाजा बंद करके, तो एक, कुछ लोग तो कहते थे कब हमारा भाग खुलेगा, हम अंदर जाएंगे महाप्रभु के कीर्तन का दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ लोग पाखंडी कहते थे अंदर करते क्या है ये छुपकर, ये क्या करते हैं अंदर छुपकर, हम देखना चाहते हैं, लगता है कि दिन के अंदर ये शहर के अंदर से स्त्रियों को भगा के लाते होंगे, रात को अंदर बैठ के उनको देवी की पूजा करके शराब पिलाते होंगे, पता नहीं ऐसे कुछ अपराध करते हैं, हमें पता लगे कि ये बंद क्यों करते हैं, क्योंकि हमसे डरते हैं। तो उनमें से एक उनका प्रतिनिधि ऐसा पापी अपराधी था, गोपाल चप्पल उसका नाम था। उसने क्या किया, श्रीवास आंगन के बाहर, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर दुर्गा पूजा की सारी सामग्री रख दी, जो तांत्रिक लोग करते हैं, और सुबह सब लोगों को बोला देखो देखो, आप कहते हो ये भगवान का नाम लेते हैं, ये तो तांत्रिक के अंदर लड़कियों को फंसा के ले जाते हैं, पापी हैं। श्रीवास ने उठ के पहले अपने आंगन के बाहर देखा, देवी दुर्गा की पूजा की सामग्री बड़ा अच्छा सुनने का है, ये नहीं कहा लोगों को, कहा नहीं मेरा नहीं है, पता नहीं कौन रख के गया, ऐसा नहीं बोला। पूरे नवद्वीप के बड़े पंडित ब्राह्मणों को बुलाया, बोला महाराजो देखो ये मैं देवी की पूजा रोज रात की करता हूं, ये देखो मैं सारा जो काम तंत्र जंतर का करता हूं, अभी आपको पता लग गया ना कि मैं कैसा हूं। सब पंडित बोलते झूठ, आप ऐसा नहीं कर सकते, अपनी सफाई नहीं दी कि मैं नहीं करता हूं, मेरा नहीं, ऐसे नहीं बोला, बोला हां मैं करता हूं, सबने बोला आप नहीं करते, और उन ब्राह्मणों ने कुछ लोग बुलाए और स्वयं ने घर साफ किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, हम जानते हैं आप महान हैं, अपने ऊपर ले लिया कि मैंने ये किया है। और दूसरे दिन गोपाल चप्पल को लेपरासी हो गई, लेपरासी हो गई गोपाल चप्पल को, सारे शरीर के अंदर से कीड़े गिर रहे हैं, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया,
गंगा के तट पे बगैर घर के पड़ा हुआ है महाप्रभु जा रहे हैं, चरणों में गिर के बोला महाप्रभु दया करो महाप्रभु क्रोध आ गया, बोला पापी अपराधी वैष्णव अपराध किया है, श्रीवास पंडित का अपराध किया है, श्रीवास ठाकुर का, तुम तो ऐसे ही मरो। यहां तो महाप्रभु ने बहुत क्रोध किया, लेकिन कुलीन ग्राम में जब महाप्रभु आए 4 साल के बाद, तब यही लेपरासी वाला गोपाल चप्पल महाप्रभु के चरणों में जाके गिर पड़ा, महाप्रभु अब दया करो, अब मेरा उद्धार करो। बोला तेरा उद्धार तब होगा जब श्रीवास तुम्हारे को क्षमा करेगा। और श्रीवास ने तो दिल खोल के कहा नहीं नहीं आपको मैं मेरी तरफ से क्षमा करता हूं। तब जाके 4 साल के बाद इसी कुलीन ग्राम में उस गोपाल चप्पल की को जो जो रोग था लेपरासी का वो नाश हुआ था। देवानंद पंडित आदि कितने लोग जो अपराधी थे कुलीन ग्राम में, महाप्रभु ने सबको अपराध से मुक्त किया था। और वहां से महाप्रभु चले गए कन्हई नटशाला से होके रामकेली, जहां के रूप और सनातन गोस्वामी से जाके मिले। नाम तो वृंदावन जाने का था, लेकिन वापस आके महाप्रभु कहते हैं यात्रा तो बड़ी अच्छी ही, मैं भक्तों से मिला, मेरी माता से मिला। मैं किससे मिला? मेरी माता सची से मिला और दूसरी मेरी गंगा माता से मिला। ये दो माताएं मेरे आश्रय हैं, एक तो मेरी जननी और दूसरी गंगा, इन दोनों का आश्रय, ये मेरी दो माताएं हैं, इनका मैंने दर्शन किया। लेकिन फिर रामकेली में मेरे को दो बड़े महान वैष्णव मिले, दो बड़े महान वैष्णव मिले, थे तो मंत्री लेकिन कृष्ण महान भक्त थे। मैं उन दो को मिल के आया और महाप्रभु केवल उन दोनों को दीक्षा देने के लिए गए थे। दीक्षा देने के लिए शिष्य गुरु के पीछे नहीं भागा था, महाप्रभु साक्षात भगवान रूप और सनातन गोस्वामी के घर में गए थे उनका उद्धार करने के लिए। दबीर खास और साकिर मलिक, साकिर मलिक आपका नाम सनातन है, दबीर खास आपका नाम रूप है, जाके उनके घर में दीक्षा देके आए थे। उन दोनों ने वहां भी बहुत प्रार्थना की थी महाप्रभु को, महाप्रभु का कृष्ण आपका निश्चित रूप से उद्धार करेंगे। जब महाप्रभु वहां से वापस आने लगे तब सनातन गोस्वामी ने कहा था वृंदावन जाना हो तो इतनी भीड़ साथ मत ले जाना, मुस्लिम शासन है, बहुत कष्ट होगा, अकेला जाना चाहिए वृंदावन। महाप्रभु उस वक्त तो कुछ सुना नहीं, लेकिन रात को जब सोए जाके तो सोचा सनातन ने क्या कहा, ये बड़े बुद्धिमान है, पॉलिटिशियन है, इनको मालूम है देश का कौन सा कानून चल रहा है, इस वक्त कौन सा हवा है देश की, अब वृंदावन तो अकेले जाने की जगह है। अरे अकेला तो माधवेंद्रपुरी गया था, तब तो साक्षात श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे, अपने साथ में कोई ज्यादा मेला झमेला नहीं लेके गया था। ये महाप्रभु कहते हैं माधवेंद्रपुरी अकेले गए और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, तो मैं अब जब भी वृंदावन जाऊंगा अकेला जाऊंगा, नहीं तो एक सेवक ले जाऊंगा और ये सारे लोग इकट्ठे करके नहीं जाऊंगा। महाप्रभु वहां से लौटे शांतिपुर आए, शांतिपुर में सची माता वापस आई और उसका दुख नाश हुआ, अपने पुत्र को दोबारा देखा। नित्यानंद प्रभु वहां, अद्वैत आचार्य वहां, सब भक्त आके वहां इकट्ठे हुए। और उस वक्त रघुनाथ दास गोस्वामी दोबारा दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु के शरण में गए और 7 दिन तक रहे रघुनाथ गोस्वामी। पहला गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी मिला है, ये पहला गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु से मिला है। दूसरा रूप और सनातन गोस्वामी नहीं, दूसरा है गोपाल भट्ट गोस्वामी जो दक्षिण भारत की यात्रा में मिले थे, तीसरा रूप और सनातन गोस्वामी, तीसरा और चौथा, और पांचवा है बनारस में मिला था तपन मिश्रा का बेटा, क्या नाम, गोपाल रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने चेतना महाप्रभु को बच्चा था तब देखा था, कभी बात नहीं की थी, कभी मिले नहीं थे। तो ये गोस्वामी दो को भगवान श्री चेतना महाप्रभु स्वयं गए थे। ये देखिए बहुत बड़ी अद्भुत बात है, गुरु जाके पहुंचे थे, सभी गोस्वामी को स्वयं चेतना महाप्रभु जाके आशीर्वाद देके आए थे। तो वैष्णव कौन है जिसको देखकर भगवान याद आ जाए, वैष्णव कौन है जो निरंतर जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो, और ऐसे वैष्णव की सेवा करने से और नित्य हरिनाम कीर्तन करने से बहुत शीघ्र श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। तो ये दो बातें हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान को मिलना मुश्किल है, लेकिन भगवान के भक्त को प्रसन्न करना आसान है। प्रभुपाद जी कहते हैं राजा को खुश करना मुश्किल है, आप किंग को क्या दोगे? वो कंट्री का मालिक है, सब थे उसका है, उसको कौन सी भेंट दोगे, खुश करोगे? लेकिन किंग के छोटे बेटे को एक टॉफी का पैकेट लेकर दोगे ना तो भी किंग खुश हो जाएगा। किंग के बेटे को छोटा सा बिस्किट और कुकीज दे दोगे ना, टॉफी दे दोगे ना, किंग खुश हो जाएगा, मेरे बेटे को गिफ्ट दिया है। सही है कि नहीं? प्रभुपाद कहते लाइक दिस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज कृष्ण। कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत आसान नहीं है, महाप्रभु तक जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वैष्णव भक्त उनके उस छोटे बच्चे के समान है। उनको तो थोड़ा सा ऐसे प्रसाद हाथ में देने से भी प्रसन्न कृष्ण हो जाएगा, अरे मेरे वैष्णव की इतनी सेवा कर दी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके रहे तो जगन्नाथपुरी के पूरी ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र ने कहा मैं उनका दर्शन करने चाहता हूं। सर्वभौमानंद भट्टाचार्य ने आके कहा कि आप राजा दर्शन करना चाहते हैं। बोला राजा का दर्शन नहीं करूंगा। बोला महाराज बड़ा भक्त है। बोला भक्त हो तो हो लेकिन है तो राजा ना, तुमने दोबारा कहा तो मैं नीलाचल से चला जाऊंगा। रामानंद राय ने महाप्रभु को आके कहा आपने कहा था मैं गवर्नर की नौकरी छोड़ दूं प्रताप रुद्र की। बोला हां मैंने कहा था। बोला प्रताप रुद्र ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, आपका नाम लिया मैंने कहा महाप्रभु ने कहा है कि नौकरी छोड़ के रिटायर होके ना के पुरी में रहो। उन्होंने बोला महाप्रभु की सेवा में जाना है तो जाओ। तो चेतना महाप्रभु के दिल में प्रताप रुद्र के लिए स्नेह पैदा हुआ, अरे भक्त की सेवा की है, भक्त के ऊपर इतनी करुणा की है, रामानंद राय को मेरा नाम सुन के मेरी सेवा में आने के लिए अपनी नौकरी से पेंशन दे दिया। चैतन्य महाप्रभु का हृदय थोड़ा नरम हुआ और रथ यात्रा के दिन जब देखा, रथ यात्रा के दिन जब देखा महाराज प्रताप रुद्र हाथ में सोने का झाड़ू डंडे वाला जगन्नाथ के आगे झाड़ू निकाल लाए। महाप्रभु ने कहा ये निम्रता भगवान के सामने निम्रता और वैष्णव की सेवा का भाव देखा महाप्रभु के हृदय में प्रताप रुद्र के ऊपर करुणा आएगी। और तब सर्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद ने कहा अब जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे नाचते हुए महाप्रभु थक के जाके सोए है ना, अब तुम वैष्णव का वस्त्र पहनो और महाप्रभु के चरण जाके दबाओ, थके हुए हैं। और चरण दबाते दबाते भागवत का रास पंचोध्याय गाना जैसे ही प्रताप रुद्र के मुख से निकला तव कथा मृतम तप्त जीवनम। महाप्रभु उठ के आलिंगन किया कि आपने तो मेरे को बहुत ऋणी बना दिया, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस आपको केवल आई कैन एम्ब्रेस यू ओनली, मैं आलिंगन कर सकता हूं। प्रताप रुद्र के ऊपर महाप्रभु ने ऐसी कृपा की, क्यों? वैष्णव सेवा की निम्रता थी। वैष्णव सेवा और हरि कीर्तन ये दो काम ऐसे हैं जिससे कृष्ण की प्राप्ति होगी, ये महाप्रभु की शिक्षा है। आज हम इस कथा को यहां समाप्त करते हैं। कल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे, जगन्नाथ रथ यात्रा और महाप्रभु का लीला उसके साथ क्या है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ जिज्ञासा है तो बोलिए। एनी क्वेश्चन और कमेंट? हाँ हो गया, एक घंटा हो रहा है, इट्स ओके। कोई जिज्ञासा समथिंग? महाप्रभु की शिक्षा, क्या कर्तव्य हमारा है, क्या साधन है? कर्तव्य हमारा है वैष्णव सेवा, साधन है हरि कीर्तन, ये दो करेंगे तो हमारे जीवन में श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। कृष्ण चरण प्रेम मिले तो संसार का सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। हरे कृष्ण गोलोकेर प्रेम धन, ये धन है कृष्ण प्रेम का, ये धन कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये धन इस दुनिया में चलेगा लेकिन गोलोक तक ये धन हमारे काम आएगा, ये वहां का क्रेडिट कार्ड है गोलोक का, इस दुनिया का नहीं, इसको जीवन में अपना लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।